માતેલે સોતેલે ભોલાનાથ રાજ તિલક. હા, આજ કી મુખ્ય વાત થી 21 જન્મો તક રાજાઈ ઉનકો મિલેગી જો પૂરા બલિહાર જાયેંગે, ઓર જો નહીં જાયેંગે બાબા ને કહા વો 21 બાર પ્રજા બનેંગે. બાબા જો ડીપ જ્ઞાન હૈ ફિલોસોફી હૈ વો ક્લિયર કરતા હૈ, ઇસમે કિસી કો પરેશાન હોને કી જરૂરત નહીં. બલિહાર જાને કા આજ બલિહાર પે હમ ચર્ચા કરતે હૈ, બલિહાર ઓર રાજ તિલક મિલતા હૈ હમે. બલિહાર કા ગુઈ અર્થ ક્યા હૈ, ક્યોં બલિહાર હોને વાલો કો રાજાઈ મિલ જાયેગી. એક હૈ સ્થૂલ બલિહાર હોના, ભાઈ હમ યજ્ઞ મેં સમર્પિત હો ગયે, સેવા કરને લગે, વો ભી બલિહાર હૈ. પરંતુ જો ગ્રસ્ત મેં હૈ વો ભી બલિહાર હો સકતે હૈ. એસે કઈ માતાએ કુમાર કન્યાએ મિલતી હૈ જો વાસ્તવ મેં બહાર રહેતે હુએ ભી સચ્ચે દિલ સે બલિહાર હૈ. બલિહાર કા પહેલા ये जो बाबा ने यज्ञ रचा है ये मेरा है. जैसे बाबा मेरा है वैसे ही ये यज्ञ भी मेरा है. मैं एक उदाहरण दूं आपको, आप सब उस बात से परिचित हैं, यज्ञ में वैगरी पार्ट आया, बहुत लोग चले गए, दो तिहाई चले गए आधे से ज्यादा. सोचो आपके घर में दो बच्चे हों, दो आप हों, घर में समस्याएं आ जाए तो घर छोड़ के चल देंगे? कोई है ऐसा उदाहरण कि घर में समस्या आ गई, चलो यहाँ तो खाने को भी नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से, करेगा कोई? तो उन्होंने यज्ञ को अपना नहीं माना था और बाबा को ठीक से नहीं पहचाना था. भगवान के होते, उसका यज्ञ होते, उसके बच्चे होते, ये ऐसा क्यों हो गया? वो तो बोलने लगा, क्या हो गया, बाबा है नहीं फिर? इसका मतलब है बाबा नहीं है, समझे आगे? लेकिन ये भूल गया, ये पता ही नहीं था एक्चुअली तब उन्हें, कि साधनाओं के मार्ग में परीक्षाएं देकर ही मनुष्य निखरता है. सोना सोना तप कर ही निखरता है, क्योंकि उसके बाद यज्ञ का स्वरूप दूसरा होना था. वो बाबा को पता था ना, शिव बाबा को सबको सेवाओं पर जाना है, सेवाओं में उन्हें विघ्न आएंगे, कष्ट होंगे, क्योंकि एक नया ज्ञान लेकर जा रहे हैं. जब संसार में कोई नया ज्ञान लेकर जाता है उसे कष्ट होता है, लौकिक में भी. जब पहले पहले एक वैज्ञानिक ने ये कहा कि धरती गोल है तो लोगों ने उसको फांसी पे चढ़ा दिया, क्योंकि क्रिश्चियन के जो लीडर थे उन्हें ये बात भाई नहीं. राजाओं की बात अलग थी, जो सम्राट थे उन्होंने कहा भी भाई इस बात को देखा जाएगा, खोज नहीं, ये बिल्कुल गलत है, नास्तिक है, ईसाई धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म विरोधी व्यक्ति है, फांसी पे चढ़ा दिया. तो बाबा को ये बिल्कुल पक्का पता था कि जब जाएंगी ये बहने सेवाओं पर तो किस किस तरह की परीक्षाएं इनके सामने आएगी. तो बाबा हरेक को बहुत मजबूत बनाना चाहते थे ताकि कोई भी परीक्षाओं से विचलित होकर छोड़ न दे. वहां अगर छोड़ते हैं तो मुश्किल होगी यज्ञ के लिए, इसलिए पहले ही छोड़ दो. तो बलिहार का पहला अर्थ है अपनापन. बहुत गहराई है इसमें, इस पर आप चिंतन करिए. यज्ञ हमारा है, यज्ञ में अगर कुछ नष्ट हो रहा है तो जैसे हमारे घर में कुछ वेस्ट हो रहा हो, हमें ख्याल होता है या नहीं? क्या ट्यूब बाहर जल रही हो, हम जलती हुई छोड़ के सो जाएंगे घर में? पता है बिल बढ़ेगा, पता है ना बिल बढ़ेगा, इसलिए चाहे नींद भी आ रही हो पहले उन्हें बंद करेंगे। यज्ञ हमारा है, एक बात, बाबा हमारा है और हम बाबा के हैं। जो बाबा ने राजयोग की परिभाषा दी है कभी, वही आज बलिहार की परिभाषा हम आपके सामने रखते हैं। बलिहार माना मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। अब ये सुख संवाद है, ये परिवारों में ग्रस्त में रहने वाले भी कर सकते हैं, और अगर समर्पित ये नहीं करते तो वो भी बलिहार नहीं है। अगर समर्पित होने के बाद तेरा मेरा बहुत है तो वो बलिहार नहीं है, राजा इसके अधिकारी नहीं है। इसलिए जो आत्माएं तेरे मेरे से मुक्त हो गए वो संसार में चमकेंगे। अब चमकने का समय आ रहा है। जब बाबा व्यक्त हुए, नींद होते थे बाबा, मुझे याद है यही बीच में बाबा बैठते थे, इस पे बैठते थे, तब ये सब नहीं होते थे और सब साधन, कुर्सियां एक भी नहीं थी यहाँ, सब नीचे बैठती थी दादियां सब। तो कवि जी हैं एक दिल्ली के, तो उसने यहाँ बैठ के बाबा के आगे गीत गाया, और गीत में क्या गाया, तुम्हारे बिना मधुबन सोना लगता है। तब ये माइक भी नहीं थे यज्ञ में, एक भी नहीं था ये, तो बाबा ने वही रोक दिया, नहीं गलत है ये, ज्ञान चोरी ये छुपा है, छुपा है केवल, तो सितारों की रिमझिम आ गई। सूरज आसमान में चमकता रहे तो सितारे नहीं चमकते, सूरज को छुपना ही पड़ता है सितारों को चमकाने के लिए। तो सितारों की चमक बहुत है, सोना नहीं है मधुबन, वही रुकवा दिया गया। तो समर्पित होकर भी जिसने तेरे मेरे का त्याग नहीं किया वो बलिहार नहीं, समर्पित तो है बलिहार नहीं। इसलिए आज बाबा ने शब्द बोला बलिहार, समर्पणता से थोड़ा आगे का है, सब कुछ बलिहार कर दिया, तन बलिहार। क्या अर्थ हुआ इसका? तन सेवाओं में बलिहार, तन साधनाओं में बलिहार। ये नहीं हम तो थक गए, हमें तो 4 घंटे सेवा है, अब हमारी ड्यूटी नहीं है, अब तुम जानो हम तो चले, ये नहीं बलिहार माना अपना। घरों में कोई कहेगा मेहमान आ गए कि मेरा तो खाने बनाने की ड्यूटी पूरी हो गई, अब मैं नहीं बनाऊंगी चाय वाय, मेहमान आ गए वापिस जाओ, कहेंगे? कहती है माता है मेरा है। तो ये मेरापन और अपना सब कुछ बलिहार कर देना, और बाबा में संपूर्ण विश्वास रखना कि बलिहार करने के बाद हमें कोई कमी नहीं होगी। परीक्षाएं होंगी और होनी भी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं? माताएं अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहाँ कभी परीक्षाएं ना होती हों? बताओ, माताओं को पता है ना? भाई जो भाई बैठे जरा ज्यादा बुद्धिमान, बताओ भेजेंगे? जिस स्कूल में परीक्षा ही ना होते, पीछे पार्लियामेंट में भी हुआ था कि 10वीं क्लास तक कोई परीक्षा ना लो, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें, तो पढ़ेंगे बच्चे? जो होशियार होंगे वो भी डर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पसंद चलेगा ना बहुत होशियार है, जब उनके नंबर आते हैं 95% आ गए, इतने आ गए, तब तो उन्हें नशा होता है और अगली बार और ज्यादा लाने की उमंग होती है। तो परीक्षाएं तो हमारी भी होंगी और होनी भी चाहिए, सोचो होनी चाहिए या नहीं, सोच के बताओ माताएं, होनी चाहिए। और संशय आ जाए परीक्षाओं में कि बाबा के होते ये क्यों, टीचर के होते परीक्षा क्यों हो रही है, सोचेगा कोई? टीचर है इसीलिए तो परीक्षा हो रही है, टीचर न होता तो परीक्षा कौन लेता? वो बलिहार, बलि चढ़ा देना मैं कौन की, कौन सा उदाहरण देते हैं बाबा? आपको तो पक्का पता है, बकरी नहीं, माताएं थोड़ा आगे हो जाओ, जिनके बीच में जगह है उस बहन को भी आगे कर दो, बहनों थोड़ा आगे हो जाओ, हाँ चलो भाइयों के पीछे बैठे बहने, हाँ तो बलि चढ़ानी थी मैं बन की और चढ़ा दी बकरों की, बेचारे बकरे ने क्या दोष किया था, उसको बलि का बकरा नाम ही पड़ गया, बलि का बकरा, उसकी बलि चढ़ा दी। हमने तो एक देखा पीछे, पहली बार देखा जिंदगी में, एक मंदिर में हम गए, किसी देवी का मंदिर था, वहाँ बलि चढ़ती थी, तो वहाँ के जो कमेटी थी मंदिर की, मंदिर बहुत बड़ा, उसने उसको बंद कराया, बलि नहीं, तो फिर कोई एक वो बना राजा का लड़का, भूतपूर्व राजा का लड़का एमएलए बना, उसने कहा कि देवी नाराज हो जाएगी, फिर बलि चालू कराई। तो हमने क्या देखा, एक बकरे को बलि के स्थान पे खड़ा किया गया था, एक स्थान होता है, अब बकरे को बताया नहीं गया तो तुम्हारी बलि चढ़ेगी, लेकिन उस स्थान पे आते ही और उसके ऊपर जो लाल निशान लगाया गया था, बकरा इतना कांप रहा था, वो सबको दिख रहा था, उसका भय हर व्यक्ति देख सकता था कि उसे आभास हो रहा है पूरा, वहाँ खड़ा वहाँ बांधते उसको, तो वो मैनेजमेंट वाले ही हमें घुमा रहे थे, मैंने उन्हें कहा ये देखो गलत है ना बेचारा बकरा, इसका भय देखो आप, देवी कैसे खुश होगी किसी की मृत्यु से, देवियां तो जीवन दान देने वाली हैं, कहा हम सब बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हैं, लेकिन उस एमएलए ने हमारी कमेटी के लोगों को अपनी ओर मिला लिया है, मैं जो इसी जाइए ना पास करने के लिए, कहा हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम जानते हैं ये सब गलत है, तो बलि देनी चाहिए मैं पन की, कौन कौन सा मैं होता है बोलो, सब अपना अपना मैं सुनाओ बिना लज्जा के, नहीं मैं घर की बड़ी हूँ, अब आपकी समझ में आ जाएगा, मेरे बिना पूछे अलमारी का ताला नहीं खुलना चाहिए, होता है माताओं में या नहीं, सब में नहीं, नहीं कह रहा आप में है, पर ये होता है, माल सब तुम्हारा पर चाबी मेरी, ये मैं, भाई बताओ, मेरे अंदर ये विशेषता है, ये बड़ी चीज है, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसी बुद्धि तो किसी को नहीं, कई लोग तो ऐसे भी हमने देखे जो यही कहते हैं, बुद्धि तो सबको है पर मेरे जैसी किसी को नहीं, तो ये मैपन हुआ है नहीं, और मैं मेरी जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता, बाबा की मूल्यों में शुरू में एक चीज बहुत आती थी, मैं बहुत अच्छी प्लानिंग करता हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं बहुत अनुभवी हूँ, मैं 30 साल से ज्ञान में, तुम तो कल आए हो, तुम्हें क्या पता, मुझे आगे रखा जाए, और बोलो मेरी राय ली जाए, मैं इंचार्ज हूँ, मेरा कहना माना जाए, माताओं को हम बोलने देना चाहते हैं, भाई तो ज्यादा बोल रहे हैं, माताएं बोले मैं माताओं ये नहीं मैं बोलो है कुछ बाकी है अभी कुछ है, मैं घर की मालिक हूँ, मेरे पूछे बिना यहाँ से वहाँ ये चीज कैसे रखी, देखो घरों में झगड़े आप देख सकते हैं छोटी छोटी बातों पर होते हैं, मैंने ये काम किया था तुमने बिगाड़ दिया, मेरी बदनामी हो रही है, मेरे लिए लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ये भी मैं पर है, चाहे महिमा का नशा हो जाए, चाहे ग्लानी से स्थिति बिगड़ जाए, सबके पीछे मैपन है, मैं इतनी अच्छी फिर भी लोग बोलते ही रहते हैं, इसने मुझे बहुत तंग किया है, ये सब मैपन में आता है, और किसी को याद आ रहा है कुछ है? मैं घर की बड़ी हूँ, कमजोरी की भी होती है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं इस कमी को नहीं जीत सकता, ये भी मैपन है, निगेटिव मैपन। क्या याद रखेंगे हम? इस मैपन को बलिहार करना है हमें, तो इसकी जगह हमें कुछ चाहिए, कोई संकल्प चाहिए। सबसे सुंदर संकल्प है जो हमारे चित्त को शीतल और निर्मल कर देता है, बोलो पता है आपको? नहीं, और कुछ? और इसको दूसरे शब्दों में कह दो, जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु देन है, उसकी देन है तो उसका ही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा योग सुंदर होता जाएगा, जैसे जैसे हमारी स्थिति रिफाइन होती जाएगी, हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, हमारी बुद्धि दिव्य होगी, तो हमें क्या पता चलेगा? अब केवल ज्ञान है, लेकिन हमें पक्का पता चल जाएगा कि संगम युग पर इस स्थापना के कार्य में ये जो काम हो रहा है, सब कुछ बाबा कर रहा है। अभी हम केवल कहते हैं, पर ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएगा, ये सब कुछ बाबा कर रहा है, हम नहीं। हमें अगर कुछ दिया है तो ये उसकी देन है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, आप में से किसी ने सुनी होगी, करो महाभारत की अंश की एक बहुत अच्छी कहानी है। युधिष्ठिर को आभास होने लगा कि मेरे पास धर्म की शक्ति नहीं रही है। 10 बातों का वर्णन किया उसने, ये बातें बहुत रहस्य भरी हैं। मुझे एक दो याद रही, बहुत दिन हो गए मैंने पढ़ी थी, कि अब मैं जब रास्ते में चलता हूँ तो मुझे देखकर कुत्ते भौंकते हैं। सोचो आप, ये कितनी गहरी बात कही है। यानी वो धर्मराज था तो उसको देखकर कुत्ते भी शांत हो जाते थे, साइड में बैठ जाते थे, अब कुत्ते भौंकते हैं। ऐसी उसने कुछ बातें बताई। अब कहीं ना कहीं से रोने की आवाज आती है, अब गीदड़ भी रो रहे हैं रात को, ये देखो पतंग की निशानियां होती हैं। ऐसी कुछ बातें उन्होंने कही। भीम को महसूस हुआ, मेरे पास शक्ति नहीं है। कहां उसके लिए दिखाया है, पता नहीं कितने हजार हाथियों का बल, 60,000, 70, और मैं 10,000 और बढ़ा दिया, मैं तो 60 ही सुना था, इतने हाथियों का बल, और कहां उसमें ताकत नहीं रही। तो इन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम जल्दी श्री कृष्ण को बुलाकर लाओ, कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो गई है। श्री कृष्ण पहुंच रहा था, वो अर्जुन पहुंच रहा था, तो मैसेज मिला श्री कृष्ण तो गए, ऊपर चले गए। हमें एक बात और हुई इससे पहले, तब तक गए नहीं थे। अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसके मन में लोभ आ गया कि आपके पास तो सोने की द्वारका है, कुछ सोना मुझे भी दे दो। उन्होंने कहा ले जाओ जितना लेना, रथ भरा दिए कई, गोप गोपियां भी दे दिए बहुत सारे। और श्री कृष्ण ने समझा मेरा काम पूरा हो गया, अब इन सब के मन में लोभ लालच प्रारंभ हो गया, वो तो गए। अब अर्जुन जब आ रहा था माल सब लेकर, जिसको नशा था मैंने सारा महाभारत युद्ध जीता है, उसको आबू के पास भीलो ने दंडों से पीटा और सारा धन माल छीन लिया। आबू का ही नाम है वहाँ, आबू के यही से रास्ता था ना दिल्ली की तरफ जाने, यही से रास्ता था। तो श्री कृष्ण चले गए, मैसेज मिल गया। तो जब पांडवों को पता चला कि श्री कृष्ण चले गए हैं, तब उन्हें आभास होने लगा हमारे पास कुछ नहीं है, तब उन्हें पता चला कि हमारे सिर पर तो श्री कृष्ण का हाथ था, उसकी शक्तियां हमें काम कर रही थी हमारे साथ। उसके बाद भीम में ताकत नहीं थी, अर्जुन को पीट दिया भीलों ने दंडों से, धनुष्वान की भी जरूरत नहीं पड़ी। और युधिष्ठिर को लगा कि धर्म का बल नहीं है, तब उन्होंने निर्णय लिया हमारा समय पूरा हो गया, हम चले। तो उनको दिखाया वो पहाड़ों पर गए। तो हमें भी ये पूरा पक्का पता होना चाहिए ज्ञान से नहीं अब अनुभूतियों से, कि संगम युग पर सब कार्य बाबा के द्वारा ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी अनुभव करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी अगर हम कर रहे हैं वो भी बिना प्रभु कृपा के नहीं हो सकता। अरे बाबा ने शब्द कैंसिल कर दिया था कि भक्ति का शब्द है, पर ये है सत्य। जब तक उसकी दृष्टि किसी पर ना आए, जब तक उसकी सकाश न मिलने लगे, या यूं कहें जब तक वो न चाहे, कोई श्रेष्ठ योगी भी नहीं बन पाता। इसलिए बहुत आवश्यक है हम बाबा के दिल को जीत लें, बाबा को जीत लें। और कैसे जीत सकते हैं उसको? दो चार बातें बताओ। ठीक बोल रहे आप, आज्ञाकारी बनकर याद करो आप बाबा क्या क्या कहते हैं, बाबा को कौन प्रिय है। एक तो पवित्रता उसे सबसे ज्यादा प्रिय, इसे सच्चाई कहते हैं। सच्चाई का अर्थ केवल ये नहीं कि गलती की और बता दिया बाबा को, दूसरे दिन फिर की फिर बता दिया, रोज गलती करें और पहुंच जाए बाबा के पास, बाबा क्षमा करना आज फिर हो गई, इसको सच्चाई नहीं कहते। सच्चाई माना प्योरिटी। दूसरा जो आज्ञाकारी है, तीसरा जो दूसरों को सुख देते हैं। याद करो मुरलियों के माँ बाप, जो बच्चे सुखदायी हैं वो बाबा को बहुत प्रिय है। चौथा जो व्यक्ति सच्चे दिल से संभाल करते हैं। और पांचवा जो श्रेष्ठ योगी हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, ऐसी आत्माएं बाबा को बहुत प्रिय हैं। इनके द्वारा हम बाबा के दिल को जीत लेते हैं। और बाबा के दिल को जीतना माना जैसे भक्ति ने दिखाया, किसी ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए और कहा मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो वो सब बातें संगम की हैं। भगवान राजी तो कहेगा बोलो क्या चाहिए, जो हमारा संकल्प होगा पूर्ण होता रहेगा। तो हम अपने को बलिहार करें, लेकिन बात बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि राजा ही मिलनी है, वो भी एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म मिलेगी। और क्या बलि चढ़ाना है, इसमें और मेरे को पूरी तरह बलि चढ़ाएंगे। मेरेपन में क्या आता है, जैसे मैंपन बहुत सूक्ष्म हो जाता है, वैसे ही मेरापन भी सूक्ष्म है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, अगर मोह है बच्चों में तो बलिहार नहीं माने जाएंगे। ठीक है, माताओं को पसंद है बात, मोह को छोड़ना सहज काम तो है नहीं। ऐसे तो नहीं कोई कहे छोड़ देते हम तो मोह, हमारे पति ने हमें बहुत तंग किया, अच्छा हुआ हमारा मोह निकल गया, और फिर पति ठीक हो गया तो मोह डबल हो गया, ये कई केस हुए हैं। इसलिए मारपीट से मोह छूट जाए ऐसा नहीं होता। मोह को छोड़ने का तरीका है ऐसा दीदीपन, अपनी दृष्टि। तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इसकी जगह क्या कर दें, ये सब आत्माएं हैं और ये सब बाबा के हैं। मेरी संपत्ति माताओं के पास बहुत है या नहीं, माताएं बोल नहीं रही, बोलती नहीं माताएं, गुप्त रखती हैं। भाई आज एक का फोन आया मुझे, एक बहन बात कर रही बड़ी अपनी माँ के बारे में, मेरी माँ के पास सोना और चांदी, मेरा एक भाई उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी कैसी आई, उसको धन का अति लालच, धन के लिए वो किसी को विनाश करने के लिए तैयार। कहा पति पे उसने तांत्रिक क्रियाएं कराई और पति ठीक होते हुए भी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गया। माँ के पास जो सब धन संपत्ति थी, देखो माँ जान में थी, उसने यज्ञ में नहीं लगाई, बाबा के नाम नहीं किया, उसकी पत्नी ने उसको ऐसा कर दिया है तांत्रिक क्रियाओं से कि वो जिंदी तो है लेकिन उसे कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं, वो है भी या नहीं, वो खाना खा रही या नहीं, वो संसार में है क्या, उसका सब ले लिया, खा दी है वो। तो ये मुझे फोन कर रही है, उसकी लड़की फोन कर रही थी, क्या करूं मैं, वो तो पीछे पड़ी हुई है, नष्ट करने पर पड़ी हुई है। ऐसी अनेक माताएं हैं जो सब कुछ नष्ट करती जा रही हैं तांत्रिक क्रियाओं से, उन्हें भूल जाता है कि ये भी क्या है, महापाप, महापाप। मैं सच्ची कहानी सुना देता हूँ, जो भी ऐसा करते हो इससे सावधान हो जाएं। कहानी तो बाहर वाले की है लेकिन है सच्ची, एक कुमार दिल्ली का ज्ञान में आता है। उस पर उसके माँ बाप ने शादी का फोर्स नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, इसके लिए वो अच्छी बात भी हुई कि उसके बड़े भाई की शादी हुई, पत्नी आई तेज तराक, आजकल की पढ़ी लिखी, आते ही उसने अपने पति पे ऐसा वशीकरण मंत्र कराया कि पति माँ बाप से बात नहीं कर सकता, ऐसा कर दिया, उसको बिल्कुल विरोधी कर दिया, और उसको लेके दूर नौकरी करने चली गई। 11 साल हो गए उसको संतान नहीं हुई, ज्योतिषियों के पास गई, संतान नहीं हुई, बताओ क्या करें। ज्योतिषी ने सब कुछ देख लिया, उसने ज्योतिषी भी कोई बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कहा तुमने किसी बच्चे को उसकी माँ से वंचित किया है ना, उन्हें बता दिया मेरा ही पति, कहा तो इसका परिणाम ये है कि तुम निसंतान रहोगी। अब उसे होश आई, दिमाग ठिकाने लग गया, 12 साल के बाद घर में आई, माफी मांगने लगी, लेकिन अब क्या होगा, अब तो उसे श्राप मिल चुका है, वो निसंतान रहेगी और उसका पति तो ऐसा हो गया है बस जैसे वो माँ की तरह ही, न जिंदा न मरा, नौकरी करता है बस, सब उसे लाके दे देता है, खत्म, इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं। तो जो माताएं ऐसा काम करती हैं वो महापाप करती हैं, उसकी तो उनकी दुर्गति बहुत होने वाली है, हो रही है, बहुत हो रही है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र रिटर्न होकर उन्हीं पे चला जाता है कुछ समय के बाद। ये तंत्र मंत्र करने वालों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए, इसलिए इस पाप के धंधे में किसी ज्ञानी को नहीं लगना चाहिए। तो मैंपन और मेरे को हम पूरी तरह बलिहार करेंगे, विकारों को बलिहार करना ये भी एक तरह की बलिहारी है, यानी अपनी कमजोरियों को बलि चढ़ा देना, चाहे सारे विकार, चाहे मन की ईर्ष्या द्वेष, चाहे बदले की भावना, चाहे क्रोध, सबको बलि चढ़ा देना, अर्पित कर देना, जो बाबा कहते हैं यज्ञ में सारी बुराइयों की बलि चढ़ा दो। और पिछले संडे की मुरली में भी था, तुम इन सब की बलि चढ़ा दोगे तब क्या होगा, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाएगी। जब तक मुख्य आत्माएं अपनी सभी बुराइयों को बलिहार नहीं करती यज्ञ में, बलि नहीं चढ़ाते, तब तक संसार की संपूर्ण आहुति यज्ञ में नहीं पड़ेगी। तो हमें स्वयं को बलिहार करना है, मन से कर दें, सब कुछ तैयार। देखो बाबा को किसी का धन चाहिए नहीं, बाबा के लिए हमारा धन कितनी वैल्यू का है, मान लो 100 रुपए, 1,000, 1,00,000, 1 करोड़ तो बहुत हो गया ना, बाबा के लिए उसकी कितनी वैल्यू है सोच लो। बाबा जब ये संसार हमारे हाथों में देकर जाएगा तो क्या करेगा इस संसार को, ये तो बना है ना अपना, वो भारत फिर भरपूर बनेगा, आकाश भी हीरों से भरा होगा, ये सत्य है, धरती भरपूर होगी, भारत की धरती में नीचे अथाह धन संपदा है। आपको पता हो ये जो मेटल होता है ना, सोना चांदी ये हीरे, ये घूमते हैं धरती में, मूवमेंट है इनमें, ये स्थिर नहीं होते, अब वो सब भारत के नीचे आ चुका है, वो माल सब ऊपर आएगा। मैं छत्तीसगढ़ में जाता हूँ तो वहाँ मुझे हर बार ये बात सुनने को मिलती है कि आज यहाँ खोज हो गई, आज वहाँ खोज हो गई, क्या धरती में हीरो की खाने। लेकिन बहुत गहरी, बहुत गहरी, वो भूकंपों से ही ऊपर आ जाएंगे फटते। मैं तो आश्चर्य करता हूँ, कई जगह मुझे आदिवासी जगहों पर जाना पड़ा। आदिवासी माताएं देखने में गरीब माताएं, भोली भाली माताएं, स्कूल तो कभी देखा नहीं, लेकिन सोना इतना पहना हुआ कि कान भी नीचे चला गया, सोने से लड़के कट जाता है ना। गले में भी जो हार पहना हुआ मोटा, ऐसा नहीं सोने का पानी लगा हुआ हो, दिख रहा था। मैंने कहा देखो ये लोग, इनके पास पहले जो हमारा देश था वो इतना संपन्न था, सतयुग में कितना होगा, सोने की वैल्यू ही नहीं, इसलिए तो मकान बन जाएंगे। माताओं की शादियों में क्या लगे होंगे, हीरे मोती सोने के तार, पाउडर किसका होगा, सोने का। हो गया नहीं, अथा धन संपदा, अथा धन संपदा। अब तो बनावटी पहनना पड़ता है ना, बनावटी पहनती है माताएं सब, चोरों के डर से। चोर चोर होते हैं ना बहुत, तो बेचारी बनावटी, वो चमकीले भी ज्यादा होते हैं, बनावटी पहन लेती हैं कि चोर भी ले जाए तो ना हमें कष्ट हो ना चोर को खुशी हो। जब घर में जाके देखेगा कहेगा अरे तो धोखा दे दिया, वो तो मेरे से भी होशियार निकले। तो अथा धन संपदा जो हमें देकर जाता है उसके लिए हमारे पैसे कितने हैं। मैं पूछा करता हूँ एक एक का मकान कितना बड़ा होगा सतयुग में। पीछे मैंने पूछा भाई यही क्लास में, बहुत बहुत बड़ा आबू जितना, क्योंकि वहाँ केवल मकान नहीं होंगे, उसी में खाने पीने के साधन, बगीचे, तालाब अंदर अच्छा, बहुत बड़ा खुली जगह, पुष्प विमान रखने की जगह सबके पास होंगे ना, छोटे बड़े सबके पास होंगे, तो खूब होंगे। माताओं का अपना ही पुष्प विमान होगा, बटन दबाओ ओड़ो। हाँ सबको छोटा दे दिया। देखो सतयुग की ओर चल रहा है ना विकास, अच्छी अच्छी चीजें निकल रही हैं, और भारत में ही थोड़े ही दिनों में पुष्प विमान बन जाएगा, 10 साल लग जाएंगे पुष्प विमान बनाकर यहाँ के वैज्ञानिक हम सबको देकर जाएंगे। लो बनाया हमने, आनंद तुम मनाओ। और पुष्प विमान ये कांच के नहीं लगे होंगे, सोने हीरे लड़े होंगे उनमें। एक एक पुष्पक विमान ही इतनी संपदा का होगा कि आजकल के जो सबसे बड़े सेठ हैं ना उनके पास सारी संपत्ति भी इतनी नहीं है। तो बाबा हमें अथाह सब कुछ देता है, लेकिन उससे पहले हमें क्या बनना होता है, बेगर। बिना बेगर बने हम ये सब प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए सच्चे मन से मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा, ये हमें करना ही होगा, नहीं तो पश्चाताप बहुत होगा। जिसमें भी मेरापन रहा वो चीज हमें कष्ट देगी, बहुत कष्ट देगी। मेरी संपत्ति तो जो जाएगी जाएगी तो सही ना, हमसे हमारे साथ तो चलेगी नहीं। कलयुग का कुछ भी हमारे साथ नहीं चलेगा, तब बड़ा कष्ट होगा, आत्माओं को बहुत कष्ट होगा, हमारा सब कुछ चला गया। बच्चे, बच्चे तो हमारे हैं, उसमें तो कोई बात नहीं, ना उन्हें छोड़ सकते, लेकिन अगर उनके प्रति आत्मिक दृष्टि हो जाएगी तो कष्ट नहीं होगा। आत्मिक दृष्टि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी साधना है, इस पर सभी ध्यान देंगे। केवल देखना ही नहीं चमकती मणि, लेकिन इसको अपने चिंतन में भी लाना है। सब आत्माएं हैं, और अब सबको वापिस जाना होगा, और सबको पवित्र बनना होगा, और सभी को एक और बात हमें याद रखनी पड़ेगी, चाहे वो हमारे हैं या पराए हैं, सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होगा, चाहे वो हमारे हैं चाहे हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, देना होगा ना। कर्म क्षेत्र पर हर आत्मा स्वतंत्र है, चाहे वो हमारा आपका अपना बेटा हो बिल्कुल प्रिय जन हो, लेकिन आत्मा ने जो कुछ किया है जन्म जन्म, उसका खाका उसके साथ है, वो उसे क्लियर करना ही पड़ेगा। ये संसार में बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, तीन प्रॉब्लम जो बाबा ने सुना दी हैं कि कड़े दिन के कर्मों के हिसाब किताब हैं, वो तीन तरह से सुख तो होंगे, ब्रेन नहीं, योग तो उनका लगता नहीं ना, योग का तो संबंध हम सबसे है, ब्रेन की समस्या मस्तिष्क गड़बड़ आ जाए, रात को नींद ना आना सबसे भारी सजा है, और तीसरा भटकती आत्माओं का प्रकोप, उन पर प्रकोप रहेगा। कौन मुझे बता रहा था, आज ही शायद बताया, एक एक बहन में 12 आत्माएं हैं, उसका कुछ करो। मैंने कहा भाई दूर ही रहने दो उसको। मैंने कहा 12 हो 13 भी हो, सब कुछ 13 कर दो। ये सब भी आजकल बहुत हो रहा है, और एक काम और होगा विनाश काल में। बाबा ने ये बहुत गहरा रहस्य बताया हुआ है कि विनाश काल में कर्मों का खाता सुक्तु कराने के लिए जल्दी जल्दी मृत्यु, जल्दी जल्दी जन्म। अगर 10 साल हैं तो 10 साल में 5-7-8 बार जन्म मृत्यु, क्योंकि जन्म और मृत्यु में ही आत्मा को सबसे अधिक कष्ट होता है, बहुत बहुत कष्ट होता है उसमें। तो बाबा ने कहा सबके हिसाब किताब सुख तू करने की गोदली मिशनरी बहुत हुई है, सब सुख तू होंगे, सब देखते हैं ना, बड़े छोटे प्रश्न भी लोगों के उठते हैं कि बड़े लोगों को ये बीमारियां क्यों, पर कर्मों का खेल तो सबके साथ समान है ना। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हम सबको सुख दें, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है सुख देना, निगेटिव रूप से किसी को न सताना। उसमें भी जो पवित्र आत्माओं को सताते हैं उनका पाप बहुत बड़ा हो जाता है, पवित्र आत्माओं को जो सताते हैं। हमें बहुत ध्यान रखना है कि पुण्य कर्म अगर हमारे बढ़े हुए होंगे तो पाप कर्मों के खाते को चुक तू करना सहज हो जाएगा। इसलिए संगम युग पर हमारे लिए ये सबसे सुंदर अवसर है, स्वर्णिम अवसर है कि हम जितना चाहें पुण्य करें। कौन कौन से होते हैं पुण्य, 5 पुण्य निकाल लो, ज्ञान धन देना है, प्रकृति की भी सेवा करना, यज्ञ सेवा करना, मनसा सेवा करना, बोलो ठीक बोल रहे, माताएं बोले हैं पुण्य, सहयोग देना, कोई मान लो समस्याओं में है उसे उससे निकलने का मार्ग बता देना। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं लोगों की जिसके बारे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, करें क्या, किसी की समझ में नहीं आ सकता। मैं देखो एक का उदाहरण दूं आपको, एक कन्या ने मुझे फोन किया था, ये बात एक मास पहले की है, 1.25 मास हुआ होगा, कहा मैं बीई कर रही हूँ इंजीनियरिंग, पता नहीं क्या हो गया है मेरे नंबर एकदम कम आने लगे, मुझे डर है लास्ट सेमेस्टर आखिरी परीक्षा में फेल ना हो जाऊं, पापा की नौकरी चली गई, भाई की अच्छी दुकान है, बिजनेस खूब अच्छा चलता था, अचानक डाउन, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्यों रहा है और इसके लिए करे क्या। तो मैंने उसको सिंपली थोड़ी उमंग दी, ढाढ़स बंधाया कि कोई बात नहीं इससे आप पार हो जाएंगे, आप 21 दिन की भर्ती करो, तो वो ज्ञान में और उसकी माँ ज्ञान में। मैंने दोनों को एक विघ्न विनाशक भर्ती के लिए कहा, 21 दिन योग, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये 200 मान याद करके उसने 21 दिन की भर्ती की, और 2-3 दिन के बाद ही मुझे फोन किया कि मेरा एग्जाम भी हो गया है, एग्जाम हो गया था और मेरी फर्स्ट ग्रेड आई है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, नहीं लक्ष्य था। मैं तो सोचते थे क्लियर हो जाए, बस पास हो जाऊं, फर्स्ट ग्रेड। पापा की जॉब लग गई, दुकान अच्छी चलने लगी। तो सभी को ये ख्याल रहे, माताओं को विशेष, घर में ऐसी समस्याएं आ जाएं जिसका कोई हल दिखाई न दे, उन सब का हल है योग बल। सबको याद रखना, जहाँ कुछ समझ में न आए, योग बल से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। क्योंकि योग के वाइब्रेशंस क्या करेंगे, योग किया उन्होंने किस दिन, क्या किया योग ने, बोलो, क्यों विघ्न विनाश हो गए, जो पाप कर्म विघ्नों का रूप बनकर उनके मार्ग में आ गए थे, 21 दिन के योग से वो विकर्म नष्ट हो गए, वो विघ्न घट गए और लाइन क्लियर हो गई और सब कुछ अच्छा हो गया। इसलिए अपनी समस्याओं का समाधान सभी योग बल से किया करें। मान लो आपका योग नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे में ये भी होता है जब परिस्थितियां बहुत तेज आ जाती हैं तो मनुष्य का योग भी तो नहीं लगता ना। तो ऐसे में आप इस स्वमान को केवल सारा दिन याद करते रहो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इसकी धुन लगा दो जरा, धुन लगाने से मन भटकेगा नहीं और धीरे धीरे मन में स्थिरता होगी और फिर योग भी अच्छा लगने लगेगा। फिर 15 मिनट से योग शुरू करो, 15 मिनट लगाओ, फिर और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते घंटे तक ले चलो, तो समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी भी अखबारों में आता रहता है, उत्तराखंड में स्थिति वैसे की वैसी है। आज संख्या लिखी थी, मरने वाले 580, कितने होंगे, लाख। 80 गांव का तो नाम निशान नहीं रहा, जीरो हो गया है, पानी भरा हुआ है वहाँ। मरने वालों की संख्या लाखों, जो दब गए उनका तो पता ही नहीं। 580 तो उस दिन अखबार, यहाँ के अखबार में था कि 580 है, कितने लोग लापता राजस्थान के, राजस्थान के मध्य प्रदेश के, मैंने वहाँ पढ़ा था, मध्य प्रदेश वहाँ भी था कि इतने लोग लापता हो, मर गए ना एक मास में, जो नहीं आए मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो लाखों लोग गए हैं। तो ऐसी समस्याएं दिनों दिन बढ़ेंगी और ये समस्याएं मूल रूप से किस कारण से आएंगी, मूल बाहरी कारण तो बहुत होते हैं। बादल फटा तो किसी ने कहा भाई ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे बादल फट गया। किसी ने कहा पेड़ सब काट दिए, उससे बढ़ गया। किसी ने कहा धारी देवी थी उसको उठा दिया, वो नाराज हो गई, उसने नाराज होके विनाश करा दिया। ये सब बहुत बातें तो आई, लेकिन मूल रूप में मनुष्य का बढ़ा हुआ पाप, असली कारण वही है, केंद्र वहाँ है, बाकी ये सब बाहर के कारण दिखाई देते हैं। तो हम अपना पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाते चलें। धन देखो, धन कैसा है, विनाशी है, ट्रांसफर होता रहता, आज मेरे पास है, कल आपके पास, परसों तीसरे के पास, धन तो बदलता रहता है ना। लेकिन धन से अगर हम पुण्य कर लेंगे, धन को अगर पुण्य में बदल देंगे, चाहे वो किसी भी तरह से आप पुण्य करें, वो अविनाशी हो जाएगा। अपने धन से आप अपने परिवार को सुख देते हैं, वो अविनाशी हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, अपने धन से अपने परिवार को भी सुख नहीं देते। किसी में से आज प्रश्न पूछा था, शायद बाहर जब हम थे ऊपर क्लास के बाद, कोई कंजूस हो तो उसे कैसे ठीक किया जाए। क्या ये प्रश्न तो जिन्हें पूछा भी पहली बार है मेरे से। भाई कंजूस होगी तो अपनी दुनिया होती है, कि पैसा होते भी बच्चों को कुछ नहीं देंगे, बीमार भी है तो कहेंगे चाय वाय पिला दो ना ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को जाएंगे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, यही कर दो कुछ। तो पैसा होते भी न खुद सुख पाते न दूसरों को सुख देते। तो पुण्य का खाता सभी बढ़ाते चलें तो योग बल से तिलक मिलने वाला है। कौन सा? माताएं कौन कौन चाहेंगी तिलक? माताएं तो हाथ ही नहीं उठाती। बस छह राजा तो थोड़े ही होंगे। भाई बनना चाहेंगे राजा? देखो भाई तो बड़े उमंग में है। ठीक है, माताओं को बनना चाह राजा नहीं तो रानी, मैं भूल गया कहना, रानी ने हाथ उठवाना था। तो अपने को बलिहार करना है, बोलो करना है, कुछ देना नहीं है। आप सोचिए हम अपना सारा सोना चांदी दे दें, वो नहीं है इसका मतलब। मन से हर चीज से आसक्ति निकल जाए, ये मेरा है, नहीं तो प्राण उसमें अटके रहेंगे ना। ये बड़ी सूक्ष्म गति है कि प्राण उसमें अटके रहेंगे। मेरे पास एक किताब आई, जीवन के बाद जीवन। जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और 5-7 मिनट में वापिस लौट आए, उनमें से मैंने तो फट से पढ़ दी, एक ही दिन में पढ़ दी, इतनी मोटी सी थी, एक घंटे में पढ़ ली। सब में एक चीज कॉमन थी, क्या? जब वो ऊपर गए, उन्हें एक लाइट की आकृति दिखाई दी, आकृति, और उसके पास जाते ही मन परमानंद से भरपूर हो गया। अब मन करता था यहीं रहे, लेकिन फिर नीचे खींच के आ गए। क्यों खींच के आए? वो वहीं रहना चाहते थे। कौन थी वो आकृति? जरूर वो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा का कार्य चल रहा ना ऊपर, वो उनको दिखाई देते हैं और उसकी उपस्थिति ही आत्मा को आनंदित कर देती है। फिर बताया कि देह छोड़ने में बहुत कष्ट हो रहा था उन लोगों को जिनका मोह ममत्व बहुत है, चाहे काम काज से है, चाहे परिवार से है, चाहे अपने मकान से है, चाहे धन संपदा से है। और वही लोग वापिस लौटाए चाहते हुए भी कि यही रहे, परमानंद है, तुरंत नीचे खींच के चले आए। तो मुझे याद आया बाबा जो कहता है अंत में, क्या कहता है अंत में? मेरे सिवाय कुछ भी याद ना आए, ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि वो एक सेकंड में देह छोड़कर वापिस जाएंगे। और जो कहीं भी बने होंगे, उन्हें देह छोड़ने में जो कष्ट होगा अंतिम समय, वो धर्मराज की सजाएं होंगी, उसमें उन्हें बहुत भारी होगा। और दूसरी बात क्या, तीसरी बात क्या थी उनमें कॉमन? कि अंतिम समय में सारी बुरी घटनाएं हमारे सामने आने लगी, हम हटाएं उनको लेकिन वो हटे नहीं। ये अंत में बहुतों के साथ होगा, जिनके जितने पाप कर्म होंगे वो सब उनके सामने आने लगेंगे, और वो चाहे कि हम बाबा को याद कर लें, ये संभव नहीं होगा। इसलिए बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही, लंबे समय का अभ्यास। जो लंबे समय के अभ्यासी होंगे उनको ही अंत में बाबा की याद आएगी। तो विचार करना, बलिहार, सब कुछ बलि, देवान भी बलि, देह अभिमान की भी बलि, सबसे बड़ी चीज तो यही है ना। फिर मैं और मेरा भी आ जाएगा, अब सब कुछ तेरा, इसकी ओर हमें चलना है। तो आज की मुरली बहुत अच्छी थी, राजाई का तिलक मिलेगा तुम्हें। श्रीमत पर चलकर जो योग बल जहाँ करेंगे, वो स्वयं को स्वयं ही राज तिलक देंगे। तो ये रहस्य भरे महावाक्य हैं बाबा के, इनके सभी को चिंतन भी करना चाहिए और इन्हें याद भी करना चाहिए। ओम शांति।